धर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। तो सात्विक दान के बाद अब राजसिक दान क्या है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। जैसे सात्विक दान के पांच लक्षण थे, अब यहाँ राजसिक दान के भगवान कृष्ण तीन लक्षण बता रहे हैं। पहला लक्षण क्या है, प्रति उपकार अर्थम, अर्थम अर्थात के लिए या उस उद्देश्य से, एक कारण से प्रति उपकार, कि हम जब दान देते हैं तो उस दान के फल स्वरूप हमें कुछ मिलेगा, इस आशा से हम करते हैं। फलम उद्देश्य, जो व्यक्ति हमें दान दे रहा है, जिनको दान दे रहे हैं उससे कुछ मिलेगा, या तो फिर कुछ अन्य फल ऐसे प्राप्त हो जाएगा। फलम उद्देश्य वहां पुनः, तो जैसे कई लोग प्रभुपाद जी हम कहते हैं कि कई लोग कर्मकांडी यज्ञ आदि करते हैं ताकि उनको अगला जन्म स्वर्ग लोक में मिल जाए, नंदन कानन में जाके अप्सराओं के साथ रमण करें, सोमरस का पान करें, या कोई चाहते हैं हो सकता है कि प्रतिष्ठा के लिए, प्रसिद्धि के लिए ऐसा दान दे कि हमारे हमारा नाम सब्जेक्ट होगा, हो जाए कि हम कितने दानी व्यक्ति हैं। और आजकल चुनाव के समय से बहुत कुछ देख रहे हैं, हर घर में जाके जगह जगह कुछ न कुछ, कोई सिलाई की मशीन देते हैं तो कोई कुछ मिक्सर देते हैं, कोई कुछ पता नहीं और क्या क्या देते हैं, तो पैसे भी दे देते हैं कि हमारे लिए आप मत दीजिए। तो ये प्रजातंत्र मजाक बन गया है, परंतु इस मजाक से कितना कष्ट होता है, कितना शोषण होता है, कितना भ्रष्टाचार होता है। फिर जो ऐसे पैसे दे देकर वोट खरीद लेते हैं, फिर उनको वापस कमाना होता है ना, सोचते हैं कि हमने इतना खर्च किया तो अब कमाना तो चाहिए अभी, तो फिर जी भर के भ्रष्टाचार कर लेते हैं। कोई वर्ग कोई दल इससे मुक्त नहीं रहा, सभी लोग देते समय तो हंसमुख चेहरे से जाके मतदाताओं के पास दान देने लगते हैं, ये कि आपके लिए हम ये दान दे रहे हैं, ये लीजिए आप दान दीजिए। परंतु प्रति उपकार अर्थम फलम उद्देश्य, हम चाहते हैं कि ये मतदान दे मेरे लिए दे, ये सब राजसिक। और कभी कभी आजकल कर्नाटक में भी, अन्य भागों में भी हम देखते हैं, भारत में ये केवल कोई 2000 रुपया देना, 5000 रुपया देना, या कुछ सिलाई का कुछ कपड़ा देना, कुछ देना, ये तो एक बात है। ये शराब के बोतल भी दे देते देते हैं कि नहीं, सब जगह ये चल रहा है। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। दोनों ही निर्लज्ज, देने वाला तो बहुत ज्यादा निर्लज्ज, लेने वाला भी निर्लज्ज। सारे समाज को अपने मत के लिए, अपने पद के लिए, सबको शराब की आदत में डाला, समाज का पतन करवाना ताकि मैं इस पद पर बैठ जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, जो भी बनना है हमको। ये सारी चीजें बहुत अति राजसिक हैं। और एक बात जो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, तीसरा लक्षण परिक्लिष्टम, परिक्लिष्टम अर्थात जो बड़े बड़े कष्ट से दिया जाता है, बड़े संकोच से दिया जाता है, जिसमें पछतावा होता है। कभी कभी पछतावा देने के पहले होता है, देते समय भी होता है, और देने के बाद भी होता है। देने के पहले और देते समय क्या पछतावा होता है, क्या संकोच होता है। कोई कोई वरिष्ठ हैं, हमारे गुरु हैं, या कोई वरिष्ठ जो बोल रहे हैं भाई दे दो दे दो, और ना नहीं बोल सकते उनको तो दे देते हैं, तो बड़े संकोच से, अभी नहीं देना चाहते लेकिन
क्या करें, देना पड़ रहा है, उन्होंने कह दिया ना, देना पड़ रहा है, तो ये राजसिक दान हो जाता है। कभी कभी भक्त लोग पहुंच जाते हैं दान देने के लिए, जगह जगह जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है, है ना, अलग अलग कार्यों से, तो कभी कभी बहुत सारे लोग देते से दान देते हैं, बहुत उत्साह से, बहुत प्रेम से, बहुत भक्ति भाव से देते हैं, अधिकांश लोग ऐसे ही करते हैं। विरला एक तो कोई मिल जाते होंगे जो कि संकोच से देते होंगे, अब पहचान ऐसी है ना, नहीं मिल सकते, अभी क्या करें, समाज में है ऐसे रिश्तेदार है, या फिर जब हमारी आवश्यकता होगी हम उनके पास भी जाएंगे लेने के लिए, तो ऐसे सब चीजें होती हैं। तो देने के पहले और देते समय ये संकोच करना ये राजसिक दान है। और कभी कभी क्या होता है, देने के बाद कभी कभी देते हुए जोश में दे देते हैं, बाद में अरे मैंने क्या किया, क्यों ऐसे दान दे दिया मैंने, अरे नहीं देना चाहिए था, इसमें चार सिनेमा दे सकता था, मैं देख सकता था, ये और कुछ ऐसे कार्य कर सकता था, अरे रे रे नहीं, अगली बार ऐसे नहीं करूंगा। तो इस तरह का पछतावा करना, चाहे आगे देने से पहले, देते समय या देने के बाद, परिक्षितम तद्दानं राजसं स्मृतम्, तो ऐसा जो दान है ये राजसिक दान कहलाता है। अब हम आगे तामसिक दान के बारे में सोचते हैं। श्लोक है, हाँ, और एक बात है कि जब दान में देते हैं तो कोई ऐसे व्यर्थ चीज दे दे जिसका कोई लाभ ना हो, जो उपयोगी ना हो, ये भी राजसिक दान होता है। तो स्मरण आता है, एक लीला याद आ रही है, कठोपनिषद में नचिकेत की लीला है, नचिकेत का नाम आपने सुना होगा। एक बच्चा था, उसके पिताजी थे, वो भी कोई ऐसे यज्ञ कर रहे थे, कर्मकांडी यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो नचिकेत ने देखा कि पिताजी गोदान कर रहे हैं, परंतु गायों में से अनेक ऐसे गाय थे जो जान बूझ कर वो दे रहे थे। पिता किस प्रकार के गाय थे, बहुत बूढ़े गाय थे, जो थोड़े लंगड़ी थे, लंगड़ी थी वो गाय, थोड़ी अंधी थी, इस तरह की गाय दे रहे थे। तो नचिकेत को बहुत बुरा लगा कि मेरे पिताजी ऐसे दान क्यों दे रहे हैं, जब दान देना है तो अच्छे हृष्ट पुष्ट गायों को देना चाहिए, जो तरुणी है, जिनका एक बछड़ा है, ऐसे गायों को दान देना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं ऐसे गायों को हम दान दे दें, ऐसे गायों की रक्षा करनी चाहिए, बड़े प्रेम से उसका देखभाल करना चाहिए, परंतु ऐसे गायों को दान में नहीं देना चाहिए। तो जब नचिकेत ने देखा कि इस प्रकार से दान कर रहे हैं तो उनको बड़ा बुरा लगा, और फिर वो सीधे अपने पिताजी के सामने गए और उनको बोलना चाह रहे थे कि आप किस किस को दे रहे हैं दान, जो देने के लिए योग्य नहीं है ऐसे गायों को भी आप देना चाह रहे हैं क्या दान में, तो ये बोलना चाह रहे थे नचिकेत। तो नचिकेत ने जाके बोला अपने पिता से कि मुझे आप दान में दोगे, किन को दोगे, जब इन सबको भी दे रहे हैं तो मुझे भी देना चाहते हो, ऐसे अभिप्राय था। तो पिताजी को गुस्सा आया, तो पिताजी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें यमराज को दान दे दूंगा, यमराज को दान देना अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना। क्रोध में क्या होता है ना, आत्मा को पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है, बाद में जाकर उसको पता चलता है मैंने क्या बोल दिया, फिर पछताना पड़ता है। तो बेचारा नचिकेत जो है वो बहुत ही शुद्ध और सीधे स्वभाव के थे, मासूम थे, उन्होंने सोचा नहीं पिताजी के वचनों को मैं सिद्ध कर दूंगा। तो वो चले गए यमराज के दरबार, यमलोक चले गए। उस समय ये सब संभव था। यमराज उस समय बाहर गए थे, 3 दिन के बाद लौटे। तो 3 दिन नचिकेत के अंदर कुछ खाया ना पिया, रहा देखते रहते। जब यमराज आए और देखा कि एक ब्राह्मण जो है बेचारा, वो भी बच्चा है, 3 दिन से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है और कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, तो यमराज को बहुत बुरा लगा। तो यमराज ने कहा, अरे हे ब्राह्मण, तुम यहाँ पे 3 दिन से रुके हो भूखे प्यासे, तो बहुत खेद है मेरे लिए इस बात के लिए। तो ये बताओ कि मैं क्या वरदान दे सकता हूँ। मैं 3 वरदान दूंगा आपको, 3 वरदान मांग लो। तो नचिकेत ने फिर ऐसे 3 वरदान मांग लिए। पहला वरदान मांग लिया कि मेरे और मेरे पिताजी के बीच में कोई गैर ना हो, मेरे पिताजी के हृदय में मेरे प्रति जो क्रोध है वो शांत हो जाए। दूसरी बात, तरह तरह के यज्ञ आदि है, वो सब कैसे किया जाए मुझे सिखलाया। और तीसरी बात, मृत्यु के ऊपर विजय कैसे प्राप्त किया जाए आप मुझे बताएं। पहली दो चीजें तो यमराज ने कह दिया तथास्तु। तीसरे के बारे में यमराज ने कहा, ये बहुत कठिन विषय है। फिर भी नचिकेत ने बार बार आग्रह करने पर फिर यमराज ने वो भी ज्ञान दे दिया। तो कहने का तात्पर्य इस संबंध में ये है कि अयोग्य दान नहीं देना चाहिए। मतलब जिन वस्तुओं को, जिस प्रकार के धन को हम दान दे रहे हैं वो सही होना चाहिए। तो ये भी राजसिक दान का उदाहरण है। अब आइए देखते हैं 22वें श्लोक में कि तामसिक दान क्या होता है। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाहृतम्। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाहृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्कृतम् तत्तामसम् उदाहृतम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ज्ञान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। यहाँ पर मद्यपान तथा द्युत क्रीड़ा में यसनी के लिए दान देने का प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ऐसा दान तामसी है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। आजकल कई लोगों में यह है, चलो हम आपको बार में ले चलते हैं, हमारी ऊपर है, हम दे देंगे पैसा, शराब पिलाने के लिए वो पार्टी दे रहे हैं, सोच रही है अच्छा दान दे रहा है, खर्च तो कर लिया उस व्यक्ति ने पैसे, परंतु ये तामसी है। तो यदि कोई शराबी है और वो कहते हैं थोड़े पैसे दे दो मुझे, और हम उनको दे देते हैं, वो क्या क्या कर जाके शराब खरीद लेगा उस पैसे से। तो प्रभुपाद जी जिस प्रकार के दान को सत्य मना करते हैं, तात्पर्य या कोई जुआ खेलने का खेलने के आदि है और हमें पता है कि उस व्यक्ति को हम दान देंगे तो वो जुआ खेलेगा, तो ऐसे व्यक्ति को दान देना ये अयोग्य है, तामसिक दान है। तो यहाँ पर भी तामसिक दान के लिए 5 लक्षण बताए गए हैं। पहला है अदेश, अदेश मतलब अर्थात जो गलत स्थान पे दान देना। सात्विक दान कैसा था? सही स्थान पे दान देना, जैसे कि जैसे कोई तीर्थ स्थान हो, धाम हो, गंगा के तट पे हो इत्यादि। और अदेश मतलब जो गलत स्थान है, जैसे कि जो शास्त्रों में योग्य स्थान कह के वर्णित नहीं है, ऐसे स्थान में दान नहीं देना चाहिए। विशेष रूप से आचार्यों ने कहा है, जैसे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे लोग मांसाहार करते हैं, द्युत क्रीड़ा करते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे स्थान में जाकर दान देना ये अशुभ हो जाता है। तो ये आदेश है, कोई शराब के अड्डे में बैठे हैं और वहां बैठ के कोई दान दे रहा है किसी गरीब व्यक्ति को, ये तामसिक दान हो जाता है। आदेश जहां पापी लोग निवास करते हैं उस स्थान में दान देना ये भी आदेश हो जाता है। फिर अकाल, अकाल मतलब गलत समय पर दान देना। सात्विक दान क्या होता है? सही काल पे, सही समय पे। तो इसके उदाहरण क्या है? सही स्थान के, सही काल के, एकादशी, कोई उत्सव हो, संक्रांति हो, कार्तिक महीना हो, ऐसे। परंतु अकाल का अर्थ क्या है? जैसे कि ये साधारण धार्मिक दृष्टि से है, भक्ति के दृष्टि से नहीं। जैसे सायंकाल के समय जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो उस समय दान देना, जबकि भूत प्रेत घूम रहे होते हैं, इसलिए सायंकाल के समय सोना नहीं चाहिए, साधारणतः संध्या के समय नहीं सोना चाहिए। इसलिए जो है संध्या वंदन होता है, संध्या वंदन 3 बार किया जाता है, सूर्योदय के समय, दोपहर के समय और शाम के समय। तो खास करके जब सूर्यास्त का समय होता है सोना नहीं चाहिए, यदि कोई बीमार है तो उसे उठा के बैठाना चाहिए सूर्यास्त के समय ताकि वो सोए नहीं, और कोई शुभ वहां पे से दान वगैरह सब नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? हरि नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम किसी भी समय लिया जा सकता है, या तो फिर ज्योतिष की दृष्टि से जो अयोग्य समय माने जाते हैं दान के लिए, ऐसे समय नहीं देना चाहिए। कई बार क्या होता है, कई दिन बहुत शुभ माने जाते हैं, जैसे अक्षय तृतीया में बहुत सारे लोग आके दान देते हैं, क्योंकि वो दान पे अक्षय माना जाता है, उसका फल अक्षय होता है। तो खैर अकाले ऐसे गलत काल पे नहीं करना चाहिए दान। फिर अपात्रे, अपात्रे जो गलत व्यक्ति को दान देने, जैसे वो शराबी है, जुआ खेलने वाला व्यक्ति है, बहुत पापी व्यक्ति है, क्योंकि ऐसे इन इन इस प्रकार के दान से उन पापी लोगों को पाप करने का प्रोत्साहन मिल जाएगा। साथ साथ ऐसे लोगों को भी दान नहीं देना चाहिए जो कि केवल अपने आप को आध्यात्मिक व्यक्ति दिखलाते हैं परंतु मांस भी खाते हैं, उनको बिल्कुल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ना आत्मा के बारे में ज्ञान है, ना भगवान के बारे में है, ना उनके हृदय में कोई भक्ति की भावना है। तो ऐसे लोगों को भी हमें दान नहीं देना चाहिए। ऐसा ऐसे दान देने से यह तामसिक दान कहलाता है और हमें उसका दुष्परिणाम मिलेगा। उस व्यक्ति को तो मिलेगा ही, साथ क्योंकि हम दान दे रहे हैं हमें भी उसका गलत परिणाम मिल जाएगा। फिर चौथी और पांचवी असत्कृतम। असत्कृतम अर्थात वो दान जो कि सम्मान के बिना दिया जाता है। जिनको हम दान देते हैं तो सम्मान पूर्वक दान देना चाहिए। यदि दान देते समय हम सामने वाले व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं या तो फिर अवज्ञातम बिना ध्यान दिए हुए हम दान देते हैं तो इन दोनों कारणों से वो दान तामसिक हो जाता है। जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अहंकार से किसी व्यक्ति को दान देता है और ये समझ में आता कि कितना घमंड उसके अंदर है और ऐसे पैसे फेंक देता ले लो, या उसके हाव भाव से उसे पता चलता है कि इसके हृदय में कितना घमंड है कि मैं दान दे रहा हूँ और अपमानित करता है उस व्यक्ति को जिसका वो दान दे रहा है, जिसको वो दान दे रहा है। तो सामने वाले को अपमानित करके उसको सम्मान न देकर बड़े घमंड से जब दान दिया जाता है बिना कोई मर्यादा का पालन किए हुए, बिना कोई सदाचार का पालन किए हुए, तो ये भी तामसिक दान कहलाता है। और ऐसा भी देखा जाता है कि कभी कभी जिस व्यक्ति को दान दे रहे हैं उसको अपमानित करके दान देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। ये कभी भाव दान देने वालों को नहीं होना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति के ऊपर मेहरबानी कर रहा हूं। तो ऐसा यदि भाव हो दान देने वाले व्यक्ति को तो फिर वो तामसिक दान कहलाता है। कई बार मैं अपना निजी एक अनुभव बताता हूँ, पहले भी शायद बता चुका हूँ कि जब मैं भी नया ब्रह्मचारी बना था मुंबई में तो हम लोग भी जन्माष्टमी के लिए इधर उधर हम जगह जगह जाते थे दुकानों में दान देने के लिए और हम रसीद की किताब जो है साथ में लेकर जाते थे। तो जैसे आप सब भी आप में से कई भक्त जाते हैं अनेक वर्षों से रथ यात्रा के लिए, जन्माष्टमी के लिए, खास करके हमारे माता जी अनेक हैं जो हर घर घर जाते हैं, घर में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं। कई बार लोग बड़े श्रद्धा से देते हैं, कई बार भगा देते हैं। तो एक दुकान में जब मैं गया तो दुकानदार समझ गया कि मैं कोई दान के लिए आ रहा हूँ, तो दूर से ही बड़े कटु वचन में कह दिया, पूरी तरह से नकल नहीं कर पाऊंगा व्यासासन का सम्मान करने के लिए। परंतु उसने कहा मैं बहुत सभ्य शब्द में कह रहा हूँ, तो उसने कहा चले जाओ। और फिर एक चवन्नी 25 पैसे चवन्नी उस समय हमारी आयु भी बहुत कम थी, गुस्सा तो आ गया और लेकिन फिर किसी न किसी तरह से बहुत कठिनाई से अपने आप को संभाल लिया। तो कुछ कहा नहीं बल्कि चवन्नी उठा ली। अंदर से तो आग बबूले हो रहे थे परंतु बाहर से अपने आप को थोड़ा वश में कर लिया और फिर उनको कहा धन्यवाद हरे कृष्ण करके चले गए वहां से। तो उसको एक मौका मिला था भगवान कृष्ण के लिए कुछ दान देने के लिए। जब देना था तो चवन ने भी दी, वो चवन ने भी बहुत भारी पड़ सकते थे, उसके लिए अच्छी दृष्टि से भारी पड़ सकते थे यदि भक्ति भाव से दिया होता तो उसकी भक्ति की शुरुआत हो सकती थी। यदि भक्ति भाव से 25 पैसे भी क्यों न दिए होंगे, परंतु दिया नहीं दिया हुआ अच्छा होगा, परंतु जब दिया इस प्रकार से अपमानित करके दिया तो यह है तामसिक दान। तामसिक दान से देने वाले को बहुत नुकसान होता है, कभी कभी लेने वाले को भी नुकसान होता है, पर निश्चित रूप से देने वाले को तो बहुत नुकसान होता है। तो आज संक्षेप में हमने ये चर्चा की कि तीन प्रकार के गुणों के अनुसार दान कौन से हैं, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। और आने वाले रविवार को भी हम इस दान के विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण महाराज जी, जैसे हम कभी भगवान के दर्शन के लिए या विशेष के लिए यज्ञ के लिए कुछ शुल्क लेते हैं, टिकट खरीदते हैं, तो ये क्या दान माना जाता है? अगर ये दान माना जाता है तो ये किस प्रकार का
भगवान के
दर्शन के लिए जैसे टिकट के रूप में टिकट खरीदते हैं या फिर अभिषेक के लिए कुछ लक्ष्मी देते हैं और इस तरह से यज्ञ के लिए कुछ शुल्क लेते हैं, तो क्या ये दान माना जाता है? और अगर ये दान माना जाता है तो ये किस प्रकार का दान है?
अच्छा प्रश्न है। देखिए ये दान देने वाले की भावना के ऊपर है। वास्तव में ये जो एक वीआईपी दर्शन की जो पद्धति शुरू हुई है, इससे मैं इतना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब भगवान के सामने जाते हैं तो सभी को एक जैसे जाना चाहिए। भगवान के सामने कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन धनी और कौन गरीब, यदि सुविधा देनी चाहिए तो ऐसे लोगों के लिए जो कि शायद वृद्ध हो गए हो, अब कतार में नहीं खड़े हो पा रहे हो, जो बीमार हो, छोटे बच्चे हो, ऐसे कुछ करना हो तो ठीक है, परंतु केवल धन पे ऐसे भेद करना कि हम धनी हैं इसलिए हम अंदर जाएंगे। एक बार इससे एक भाव अच्छा नहीं लगता है। एक बार हम बहुत प्रसिद्ध मंदिर में गए थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, और भक्तों ने हमें भी वीआईपी दर्शन ले लिए जबरदस्ती में, ध्यान ठीक है ले जा रहे हैं, दुकान ले गए, हम चले गए, हम भी खड़े थे भगवान के सामने। तो वहां पे एक सज्जन खड़े थे, वो बड़े ध्यान से देख रहे थे भगवान का दर्शन कर रहे थे, लेकिन हाथ में घंटा था नोटों का, वो कोई पकड़ा था ऐसा लेता था, हर हर पांच सेकंड में दस सेकंड में एक नोट ऐसे दे रहा था, दर्शन दे रहा था ऐसे और ऐसे पैसे दे रहा था एक एक करके। बहुत धनी आदमी होगा तो हमें बहुत बुरा लगा कि भाई भगवान के साथ इस तरह से करना कैसे उपयुक्त है, नहीं है, उचित नहीं है ऐसे करके। भले उसके मन में जो भी भावना हुई होगी कि मुझे दर्शन करना है भगवान के लिए, लेकिन उससे अच्छा उदाहरण नहीं समाज के सामने होता है। इसलिए ठीक है कि कभी कभी ऐसे करते हैं, दर्शन के लिए एक व्यवस्था करनी पड़ती है तो ठीक है, लेकिन हो सके तो हम सब साथ में जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। अभी जहां मंदिर की ओर से हो, कोई बहुत ऊंचे भक्त आ गए तो उनका सम्मान करने के लिए भले हम उनको सामने से ले आए, आध्यात्मिक योग्यता ये भी कारण है, परंतु वो जो मंदिर के अधिकारी व्यक्तियों की ओर से होना चाहिए। किसी भक्त को आगे आके सामने से नहीं बोलना चाहिए मैं वरिष्ठ भक्त हूं, मुझे दर्शन पहले लेना चाहिए, ये भावना ठीक है। तो अभी इस तरह का दान देना टिकट खरीदना भी प्रथा सब हो गई है। तो क्योंकि आजकल सभी लोग सबके पास समय नहीं होता है। पहले के समय में क्या होता था, सभी लोग जाते थे, समय पर खड़े रहते थे कतार, इतनी भीड़ भी शायद नहीं होती थी। आजकल इतनी भीड़ होती है, कभी कभी एक दिन रुक के रहना पड़ता है, तो कई लोगों के पास इतना समय नहीं होता है। तो कभी कभी ये सुविधा ऐसे कर देते हैं, तो ठीक है, मैं इतना भी विरोध नहीं हूँ, परंतु ठीक है, यदि मंदिर को थोड़ा कुछ मिल जाए जिससे कि मंदिर की सेवा हो जाए, है ना, मंदिर भी चलाने के लिए खर्च होते हैं ना, तो ठीक है, थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है। परंतु भक्तों को चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अब सब लोग साथ में मिलकर करें, ये भाव होना चाहिए, ठीक है।
महाराज जी, जब दान देने के और इसका दान में उसके प्रतियन फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, तो शास्त्रों में लालच क्यों दिया जाता है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, तो ये मिलेगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्रत्युत्साहित कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए और आपको फल मिलेगा, तो फिर फल की अपेक्षा तो आई जाएगी।
ऐसे जो सुविधा दी जाती है, ऐसे जो व्यवस्था, ऐसे जो सुविधा ही कहें उसको, दुविधा कहें, इसलिए नहीं दी जाती कि हम उन कार्यों में भगवान या शास्त्र को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, परंतु ये सारे आदेश जो हैं, ये व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो इसके बिना रह नहीं सकते। अब यदि हमने उनको ऐसी व्यवस्था नहीं दी तो वैसे भी वो करने वाले हैं, तो भले अवैध ढंग से करने के बजाय उनके लिए कोई व्यवस्था बना दे। तो प्रभुपाद जी इसके लिए उदाहरण देते हैं कि पहले, आजकल के समय तो शराब सबसे कम मिल जाता है, बच्चे भी जाकर शराब खरीदते हैं आजकल, और दुकानदार देते भी होंगे, कॉलेज के बच्चे भी जाके बहुत खरीद लेते हैं। तो प्रभुपाद जी बताया करते थे उनके समय और पहले जो भी बेचने के लिए तो अनुमति सरकार की चाहिए ही चाहिए, आज भी चाहिए, परंतु उस समय खरीदने के लिए अनुमति चाहिए होती थी, उसको परमिट कहते थे। तो परमिट दिखाने के बाद ही कोई व्यक्ति शराब खरीद सकता था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि सरकार ऐसे परमिट जो है, ऐसे अनुमति दे रही है, टिकट दे रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार चाहती है कि सब लोग शराब पिए। ऐसी व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई है जो वैसे भी शराब पीने वाले हैं, इससे बजाय कि वो कहीं अवैध ढंग से कुछ यहाँ वहाँ छुपा छुपा कुछ कर ले, फिर मर जाए, कुछ बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, इससे अधिकृत रूप से वो जाके ले ले। तो इसलिए भगवान ये जानते हैं कि सभी लोग ऐसे शुद्ध जीवन एकदम से नहीं बिता पाएंगे, तुरंत क्रमशः शनि शनि प्रगति करेंगे, तो धीरे धीरे से उनको कैसे इस रास्ते में लाना अप्रत्यक्ष रूप से। तो धीरे धीरे कहते कि भाई शराब पीना है, मांस खाना ही खाना है, तो कम से कम इस ढंग से कर लो, इन मंत्रों का उच्चारण कर लो, ऐसे कोई उपासना कर लो, इन मंत्रों का उच्चारण कर लो, फिर मांस खाओ, फिर शराब पियो। ये सारे जो आदेश हैं इस भाव से किए गए हैं, परंतु वो चाहते हैं कि जैसे जैसे वो अनेक जन्मों से व्यक्ति करता रहेगा, एक न एक दिन वो पूछे कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे हम हिंदी में या मराठी में, कन्नड़ में, संस्कृत में मांस बोलते हैं ना, मांस, तो मांसाहारी, तो ये मांसह है, मांस कहाँ से आता है, ये शब्द मांसह। जब व्यक्ति पशु की हत्या करेगा तो उसे बोलना चाहिए मांसह, मैं तुम्हारी हत्या कर रहा हूँ, परंतु अगले जन्म में मैं तुम्हारा स्थान लूंगा, तुम मेरा स्थान लोगे और तुम मेरी हत्या करोगे, मैं जानवर बन जाऊंगा, तुम मनुष्य बन जाओगे और तुम मेरी हत्या करोगे। तो ऐसे मांसहर काटते 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 आदमी एक दिन सोचेगा, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ। एक दिन होश ठिकाने आ जाएंगे उसके कि भाई मैं गलत काम कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगले जन्म में मैं जानवर बन जाऊंगा, ये मेरी हत्या करेगा। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। फिर वो मांस खाना बंद कर देता है। ऐसे धीरे 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 से वो भी अपनी चेतना की शुद्धिकरण की प्रक्रिया में प्रगति कर ले। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए ये सुविधा दी जाती है।
जो हम ट्रेन में यात्रा वगैरह जाते रहते हैं, तब मंगलमुखी ऐसे लोग होते हैं, मंगलमुखी जो बोलते हैं, वो लोग आके जबरदस्ती करते कि दान देने के लिए। ऐसे माना जाता है कि उनको दान देने के बाद जिनका देते हैं वो मंगल हो जाता है। ऐसे लोग सोचते हैं उनको देना है कि नहीं,
जो नपुंसक होते हैं। देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि हमेशा प्रसाद साथ में रखो। यहाँ पे तो इतना नहीं होता, बड़े शहरों में बम्बई में जहाँ भी अब लाल बत्ती पे रुकोगे तो वहाँ ये आते हैं दान के लिए। तो हमारे साथ कुछ तो रखना चाहिए और तिलक भी रहना चाहिए। तिलक देख के फिर वो थोड़े शांत हो जाते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा प्रसाद देते हैं, भले अच्छे तरह से पेट भरने के लिए प्रसाद देते हो। कृष्ण प्रसाद होगा तुम दान भी हो गया, समुचित दान हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ दान हो गया। और उनको अच्छी तरह से बात करो, उनके साथ प्रेम से बात करो, उनको धिक्कारो नहीं, वो भी इंसान है, वो भी अपने पुराने कर्मों के कारण ऐसा शरीर उन्होंने प्राप्त किया है। तो उनसे प्रेम से बात करना चाहिए और प्रेम से उनको प्रसाद देके भेज देना चाहिए, वो भी संतोष होकर चले जाए। ठीक है,
हरे हरे हरे। महाराज जी, ये बिना कुछ एक्सपेक्टेशन से जो भी दान देते हैं, तो इस इच्छा रख के ऐसे दान देने से हमारा क्या हानि होगा और इससे कैसे बचना चाहिए? कुछ तो इच्छा रहता है, कुछ भी हम करते हैं किसी दूसरे के प्रति भलाई या
तो प्रश्न ये है कि हमने यदि राजसिक दान दिया कि हमारे मन में कोई इच्छा है, स्वार्थ है कोई, है ना? तो यदि हमारा दान भगवान कृष्ण के संबंध में है, अन्य चीजें सब ठीक है, हम भगवान कृष्ण के मंदिर में आके दान दे रहे हैं, सही व्यक्ति को दे रहे हैं, सही कारण के लिए दे रहे हैं, परंतु इतना ही है कि कुछ हम सम्मान चाहते हैं, तो ठीक है, उस हद तक थोड़ा लाभ कम हो जाएगा। परंतु क्योंकि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, लाभ तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचेगा, भक्ति में प्रगति करेगा। व्यक्ति भक्ति में प्रगति करने के बाद फिर वो सोचेगा कि मुझे ये प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, उसके परे आ जाएगा। धीरे 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 से भगवान और भगवान के भक्तों के संपर्क में बार बार आने से फिर ये इसकी इच्छा भी चल जाएगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा कीजिए थोड़ी देर हो गई। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण। तो आज के सुंदर प्रवचन के लिए महाराज को धन्यवाद देते हैं। तीन बार जोर से बोल देते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब स्वागत करेंगे उन भक्तों का जो आज पहली बार इस मंदिर में आए हैं। जो भक्त पहली बार वहां पे आए हैं उनसे निवेदन है, कृपया कुछ समय के लिए अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। कृपया संकोच न करें, जो भक्त पहली बार आए हैं कृपया खड़े हो जाइए ताकि हम आपका अच्छी तरह से स्वागत कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं श्री राधा गोकुलानंद जगन्नाथ बलदेव से भद्राता तत्व नेता से कि वे उनकी कृपा आप सबको प्रदान करें। साथ ही ये भी आशा करते हैं आज का दिवस आपके उज्जवल भक्तिमय जीवन का शुभारंभ हो।